नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्षेत्र में हवाई संपर्क से तेज और व्यापक विकास होता है। आज कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के शिलान्यास समारोह में एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत में लगभग 70 हवाई अड्डे थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 160 से अधिक हो गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के आसपास कई हवाई अड्डों का भी विकास हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डों के निर्माण से छोटे शहरों में उद्यमशीलता और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलता है और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आती है। उन्होंने कहा कि कोटा हवाई अड्डा क्षेत्र के लिए प्रगति के नए द्वार खोलेगा।
कोटा से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को शुरू करने का अवसर मिल रहा है। राजस्थान में विकास के कि आज राजस्थान किस गति से आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, किसानों और माताओं बहनों के लिए योजनाएं हो, हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है।
इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोटा में कई दशकों से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की मांग थी और अब यह सपना साकार हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार अपने वादों को तेजी से पूरा कर रही है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री केंजारापो राममोहन नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे की परियोजना 2 साल के भीतर पूरी हो जाएगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के हरिद्वार में 1129 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों और महत्वपूर्ण निर्णयों पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए नई न्याय संहिता बनाई है।
अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून, जिसको बनाने का उद्देश्य था अंग्रेज सरकार की हुकूमत को लंबा चलाना, वो समाप्त कर हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए न्याय संहिताएं बनाई। 2028 में कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदाय के चतुर्दिक उत्थान के लिए हर संभव उपाय किए हैं। इनमें सांस्कृतिक परंपराओं और भाषाओं का उत्थान शामिल है। आज पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा कि संथाली संस्कृति और परंपराएं प्रकृति से गहरी से जुड़ी है और पर्यावरण संरक्षण तथा प्रकृति के साथ मनुष्य के सह अस्तित्व के अनुकूल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मिजोरम शांति समझौते से राज्य में दीर्घकालिक शांति और विकास सुनिश्चित हुआ है। मिजोरम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि अब मिजोरम को देश के सबसे शांतिपूर्ण राज्य के रूप में देखा जाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत के उत्थान का आकलन उसकी शक्ति के आधार पर किया जाएगा, न कि दूसरे देशों की गलतियों के आधार पर। नई दिल्ली में रायसीना संवाद में हिंद महासागर का भविष्य विषय पर उन्होंने कहा कि भारत के अभ्युदय की दिशा बिल्कुल स्पष्ट है और इसे रोका नहीं जा सकता। पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष के 8वें दिन भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अमेरिका, इसराइल और ईरान ने हवाई और ड्रोन हमले जारी रखे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को $15 करोड़ से अधिक के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। आज तड़के ईरान की राजधानी तेहरान पर फिर हवाई हमले हुए। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरवानी ने कहा है कि अमरीका और इसराइल के हवाई हमलों में अब तक 1,332 लोग मारे गए। नेपाल में 165 निर्वाचन क्षेत्रों में से अब तक 55 से के अंतिम परिणाम घोषित हो चुके हैं। शेष स्थानों पर मतगणना जारी है। प्रथम पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 76 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज शाम लक्ष्य सेन का सामना कनाडा के विक्टर लाई से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।